तो आप ये पूछना चाहते हैं कि सकल जगत का कर्ता जब ईश्वर है तो हम मनमानी करने वाले कौन होते हैं? महाराज जी से इस बारे में एक बार प्रश्न किया गया था। महाराज जी, जब कर्ता ईश्वर है तब हमको करनी का परिणाम क्यों भोगना पड़ता है? तब महाराज जी ने कहा था, प्रेमी, जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो तब तक भोगता भी तुम ही हो, उसका परिणाम तुमने भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए जब मनुष्य गुरु आज्ञा का पालन करते हुए शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार संसार में कर्म करता है तब धीरे धीरे वो इस कर्तापन से मुक्त होता है। और इसका मूल कारण ये है कि मैं अपने आप को देह समझता हूं। कर्ता ईश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि देह प्रारब्ध के अधीन है और इस देह को जिंदा रखने वाला और इस देह का संचालन करने वाला वो ईश्वर इस देह के अंदर ही मौजूद है, लेकिन मुझको उसका कोई होश नहीं है। दिन में एक बार भी मेरे ख्याल में नहीं आता कि इस देह का संचालन ईश्वर कर रहा है। मैं अपनी कामना के वशीभूत होकर पूरा जोर लगाता हूँ कि जो मुझे चाहिए वो होना ही, वो मैं करके ही छोड़ूंगा। इतना दृढ़ जब आपके अंदर संकल्प है कर्तापन का और देह करके आप अपने आप को समझ रहे हो तो पूरी तरह से आप ही करता हो। जबकि सत्य आपके बारे में ये है, जैसा महर्षि रमण कह रहे हैं कि जिन कर्मों को करने के लिए ये देह पैदा हुई है वह सारे कर्म इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब जो बात महाराज जी कह रहे हैं, जो बात वाणी कह रही है, वही बात महर्षि रमण भी कह रहे हैं, लेकिन हम इन बातों को सुन लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन इस सादी सी बात पे भी हम विचार नहीं करते। ये महर्षि रमण कह क्या रहे हैं? हमारे लिए बस एक केवल ये बात रह जाती है और सुनाने के लिए हो जाती है, कभी कोई इस पर विचार ही नहीं करता कि महर्षि रमण कह क्या रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिन कर्मों को करने के लिए ये देह पैदा हुई है वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे। अब बताओ, देह तो जड़ है, देह कैसे कर सकती है? कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कौन से कर्म करेगा? ये करेगा कर्म तो जड़ है। लेकिन महर्षि रमण यही बात कह रहे हैं कि जिन कर्मों को करने के लिए ये देह पैदा हुई है वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और यही बात गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये युद्ध तो हो चुका, अर्थात इसका डिसीजन तो हो चुका कि ये युद्ध होगा और तेरी देह भी उसमें शामिल होगी, लेकिन तू करने वाला कोई नहीं, इसको मैं करवा रहा हूं। सारे युद्ध का संचालन मैं करूंगा, तू इसका करने वाला कोई नहीं। लेकिन अर्जुन की भी बात समझ में नहीं आई, जैसे हमारी समझ में नहीं आ रही है ना, ऐसे अर्जुन की भी समझ में नहीं आई। तो सारा गीता ज्ञान अर्जुन देह है, इसको इस भाव को खत्म करने के लिए सारा ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। कर्ता अर्जुन है, इस अहंकार को खत्म करने के लिए सारा का सारा जो विज्ञान गीता का है वो अर्जुन को कृष्ण के द्वारा समझाया गया। और जो भी सत्पुरुष धरती पर आता है वो इसी विज्ञान को विभिन्न तरीकों से हमको समझाता है। कोई तो कहता है कि आत्मा अलग नहीं है, ईश्वर अलग नहीं है, ईश्वर तुम खुद ही हो, तुम खुद ही ईश्वर हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर से कर्तापन निकल जाएगा उस दिन तुमको इसका पूर्ण बोध हो जाएगा, तुम किसी भी काल में जीव थे ही नहीं, तुम किसी भी काल में मन और देह के बंधन में थे ही नहीं, ये केवल सपना जैसे था, एक संकल्प मात्र था, तुम इस संकल्प के बंधन में इतना लंबा वक्त व्यतीत करते रहे, वास्तव में तुम हमेशा से ईश्वर ही थे और ईश्वर ही हो। और जब ये जीव साधना करके गुरु के अनुसार चलता है, खुद अपने अनुभव से ये जान लेता है कि मैं खुद ही ईश्वर हूँ, मेरे अलावा दुनिया में कोई सत्ता है ही नहीं, इसीलिए उस स्थिति का नाम ही मोक्ष स्थिति है, उस स्थिति का नाम ही अद्वैत है, वहाँ दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो बताओ, आपका अनुभव या सारे सत्पुरुषों का अनुभव यही कहता है कि वो जो ब्रह्म स्थिति है, वो जो मोक्ष स्थिति है, वो अनुभव की स्थिति है और वो अद्वैत स्थिति है, वहाँ दो तो कोई है ही नहीं, वहाँ पर कौन किसका दर्शन करेगा। हम तो दृष्टा हैं, दृष्टा का मतलब हम क्या समझते हैं, देखने वाले हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपका दृष्टा हूँ। लेकिन ईश्वर को भी दृष्टा कहा जाता है, लेकिन ईश्वर ऐसा दृष्टा है जिसके आगे दृश्य नहीं है, ईश्वर ऐसा दृष्टा है जिसके आगे दृश्य नहीं है, इसको चेतना कहते हैं। जहां केवल चेतनता हो उसको दृष्टा कहते हैं, जहां दृश्य नहीं होता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप वहां नहीं होती। तो जो वस्तु मुझको दिखाई पड़ रही है वो मेरे मन का संकल्प है, ये बात आपसे कही जाती है, और ये आप अपने अनुभव से जानते हो कि ये बात सत्य है, क्योंकि स्वप्न की रचना में आपकी दृष्टि के आगे सारा संसार होता है, लोग भी होते हैं, आपकी देह भी होती है, और स्वप्न टूटने के पश्चात जब जागते हो तब आप सहज स्वीकार कर लेते हो वो तो मेरे मन का संकल्प था। सहज स्वीकार करने के बाद भी आप ये सोचने को तैयार नहीं हो कि वो बन कैसे गया, मेरे मन के संकल्प में ये ठोस रचना कर कैसे ली, इसको सोचने के तैयार नहीं हुआ। और सारे ऋषि आपको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कैसे मन जो है ठोस रूप खड़ा कर लेता है। इसी तपोभूमि में एक दिन की घटना सुनाता हूं आपको, मैं आप में से कुछ ने पहले भी सुनी होगी शायद। एक नैन सिंह यहां रसोईया हुआ करता था, ये बात 1980 के लगभग की है। तो ये पीपल का पेड़ है और बीच वाले कमरे के बराबर जो छोटा सा ग्राउंड पड़ा हुआ है इसमें दड़ी बिछी हुई थी, वहीं पर शाम को 4 बजे सत्संग हुआ करता था। हम लोग लंच करके, क्योंकि मई के महीने में गर्मी होती है, वहीं पेड़ के नीचे दड़ी पर लेट जाते थे, वो रसोईया भी वहीं दड़ी पर लेटा हुआ था। चांस की बात थी कि 3 बजे लगभग मेरी आँख खुली, साथ ही उसकी भी आँख खुल गई। अब वो मुझसे कहता है, देखो मैं आपसे कहता था ना, देखो वो बैठा हुआ है पीपल की डाल पर, जो उसको रात को दिखाई पड़ता था वो सूर्य के प्रकाश में दिन में वो उसको अनुभव हो रहा है, वो देखिए बैठा हुआ है और ये डाल काट रहा है। अब देखिए आवाज़ आ रही है कट कट की, अब उसको साउंड भी सुनाई पड़ रही है, दृश्य भी दिखाई पड़ रहा है, और आँखों में उसकी नींद की जैसे लाली होती ना, खुली आँख से वो सारा दृश्य देख रहा है और मुझे सुना रहा है। मैं बोला, नैन सिंह कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ आवाज़ आ रही है। बोला, आ तो रही है, देखिए डाल काट रहा है। अब ये प्रैक्टिकल सत्य है जो मेरा अपना दिन का अनुभव है। अंधेरे में तो भूत लोगों को दिखाई पड़ते होंगे, लेकिन सूर्य के उजाले में भूत दिखाई पड़ना एक अनोखी घटना है। लेकिन वो मुझसे अक्सर कहता था, यहाँ भूत आता है रात को, मेरी कुंडी खटखटाता है। वो डर के मारे बरंडे में नहीं, अंदर कमरे किचन में सोता था। कई बार कहता था वो लालटेन लेके आता है, जो उसको अनुभव होता था वो सुनाता था। तो अब बताइए, मन के अंदर उस भय के कैसे गहरे संस्कार बन गए, इतने गहरे हो गए कि संकल्प इतना गहरा हो गया कि दिन में भी वो स्वरूप बनकर सामने प्रकट होने लगा। ये तो भूत की बात है। अब आपको मैं ईश्वर दर्शन की बात सुनाता हूं। महर्षि रमण के पास मिस्टर पुंज गए, पंजाब के। उनको बचपन से ही कृष्ण दिखाई पड़ते थे, 6 साल की उम्र से। कभी भी अचानक सामने कृष्ण प्रकट हो जाते थे, लेकिन फिर गायब हो जाते थे वो। अब वो बड़े परेशान, उनके अंदर यही इच्छा हो कि हमेशा मुझे प्रभु के दर्शन होते रहे, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन जिंदगी भर यही होता रहा, मिलिट्री में भर्ती हो गए, मिलिट्री से बिफोर टाइम रिटायरमेंट लेके घर आ गए, इसी उद्देश्य से कि कहीं मैं ईश्वर की खोज करूं। जिसको ईश्वर के दर्शन 6 वर्ष की आयु से होते हों, वो ईश्वर की खोज के लिए उसने रिटायरमेंट ले लिया। तो अल्टीमेटली वो एक दिन महर्षि रमण के पास पहुंच गए, ऐसा घटनाक्रम बना। जब महर्षि रमण के पास शाम को बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, तो महर्षि रमण के टहलने का वक्त हो गया। वो महर्षि रमण टहलने चले गए, वो भी पहाड़ी पर टहलने चले गए। फिर पहाड़ी पर क्या देखते हैं, कृष्ण वहां भी उनके सामने खड़े हुए। जब वापस आए तब उन्होंने महर्षि रमण से कहा कि महर्षि, मुझको अभी अभी फिर कृष्ण के दर्शन हुए पहाड़ी पर। तब महर्षि रमण क्या कहते हैं, कृष्ण तुम्हारे मन में ही तो हैं, कृष्ण का स्वरूप तुम्हारे मन का संकल्प ही तो है। इस तरह तो कृष्ण के दर्शन करके तुम सारी जिंदगी बेचैन रहोगे, वो कभी प्रकट होगा कभी गायब हो जाएगा। तो जब तक असली कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, जो अंतर्यामी है, ये भटकन खत्म नहीं होगी। जिसको कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अहम आत्मा गुडाकेश, देखो गीता में भगवान कृष्ण खुद अर्जुन से कह रहे हैं, अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं। सर्वभूताशय स्थिता, सारे प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। वो सारे प्राणियों के, सारे मनुष्यों के अंदर स्थित है, और कृष्ण खुद कह रहा है कि मैं आत्मा हूं। और महाराज जी की समता विलास पढ़ लो, वहां भी ये लिख रहे हैं महाराज जी। गुरु पर सिद्धांत पढ़ लो, साफ कह रहे हैं कि गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। तो महाराज जी की बात में, कृष्ण की बात में, महर्षि रमण की बात में कोई अंतर है? हमारी सारी धाराओं में बड़ा अंतर है। मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं। गुरु की बात मानने को कोई तैयार नहीं है, मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं, यहां खड़े हुए हमसे। इसीलिए सारी जिंदगी बेचैन रहते हैं, ना सही ईश्वर की भक्ति हो पाती, ना बंधन से मुक्त हो पाते, ना हमारा कर्तापन खत्म हो पाता। तो अपनी धारणाओं के हिसाब से जब ईश्वर को सोचोगे, अपनी धारणाओं के हिसाब से सेवा सोचोगे, अपनी धारणाओं के हिसाब से जब जिंदगी चलाने की सोचोगे, तो ऐसे धोखे खाते रहोगे। बड़े भाग से किसी पूर्ण गुरु पर विश्वास आता है, भरोसा आता है, उसका पता लगता है, उसका ज्ञान लगता है, ज्ञान मिलता है। उसके ज्ञान, उस ज्ञान को मिलने के पश्चात भी हम ऐसी किताबें पढ़ते रहे, भटकते रहे दुनिया में अपनी बुद्धि का अहंकार लेके कि मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ, अपनी बुद्धि के बल से सब कुछ पता लगा लूँगा। तो संसार में ऐसे जूते खाते रहोगे, ठोकरे खाते रहोगे, क्या हाथ लगना है आपके? ऋषि के आगे माथा झुकाना ही पड़ेगा, उसके ज्ञान के आगे समर्पण करना ही पड़ेगा, तभी आपका रास्ता सीधा होगा। सत्पुरुष तो सब कुछ कह रहे हैं। अब साफ साफ महर्षि रमण ने भी कह दिया कि कर्ता ईश्वर है। उन्होंने दूसरे शब्दों में कह दिया, जिन कर्मों को करने के लिए ये देह पैदा हुई है वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे। लेकिन हमारे मन में तो ये बात आ सकती है ना कि देह तो जड़ है, फिर ये कर्म कैसे करेगी? अरे भैया, शास्त्र भी दूसरी बात भी तो कह रहा है। महर्षि रमण की बात समझ में नहीं आ रही है तो कृष्ण की बात गीता से सीख लो। गीता में साफ लिखवा है, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। इस यंत्र रूपी देह में स्थित प्राणियों को मैं अपनी माया से संसार में भरमाता हूं, संसार में घुमाता हूं। तो मेरा जैसा भी प्रारब्ध है, जिसके अनुसार ये देह और वातावरण मिला है मुझको सुख दुख भोगने के लिए, कर्म करने के लिए, वो सारी प्रक्रिया इस देह की होगी। और उसे कौन करेगा? साफ साफ कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अंदर बैठा बैठा करूंगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति। सारे प्राणियों का जो ईश्वर है, जो मालिक है, वो अंदर बैठा हुआ है उसके। तो साफ साफ तो बात है कि कर्ता ईश्वर है। तो मैं कर्ता कब बना हुआ हूं? जब मेरी इच्छा है, वो मेरी देह है, मैं देह हूं ये भाव है, और इच्छा मेरी है। जब ये भाव है आपको, तो फिर आप करता हुए ईश्वर करता कैसे हो गया? आपके लिए आपको ख्वाब में भी होश है ईश्वर करता है? ये तो केवल बात कह रहा हुआ। प्रैक्टिकली आपकी सोच क्या है, आपकी बुद्धि का निर्णय क्या है कि फॉर ऑल पर्पज मैं ही करता हूं? उसका अहंकार भी आपको, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कोई अच्छा कर्म कर लो, देखो कैसे गाओगे फिर। मैंने इतने लोगों का कल्याण कर दिया, मैंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, इतने लोगों को मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया अपने इलाज से। करता तो आप बने हुए, कहाँ होश है ईश्वर करता है? ना उस विज्ञान को जानते हो, पढ़ भी लेते हो, सुन लेते हो, विश्वास नहीं होता आपको। तो इसीलिए जब फॉर ऑल पर्पज आप ही करता हो, तो भोक्ता आप ही रहोगे, कोई दूसरा रहेगा? आपके अंदर अहंकार है, मैं देह हूं, कोई गाली आपको देता है बुरी लगती है? नहीं लगती है। सतपुरुष को 1% भी अहंकार नहीं कि मैं देह हूं, उसे कोई गाली देता उसे बुरी नहीं लगती। तो सतपुरुष में आप में थे, कितना बड़ा अंतर है। उसके साथ कुछ भी है उसको बुरा नहीं लगता, आपको बुरा लगता है, अच्छा भी लगता है। आप दूसरा आपकी तारीफ कर दे, आप उसके मुंह में आ जाते हो, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो मेरा आदमी है। बुराई कर दे आपकी तो दुश्मन की निगाह से देखते हो, ये तो बहुत बुरा आदमी है, तो दुश्मन है। और महाराज जी की क्या स्थिति है? प्रेमी एक बार बैठे हुए थे महाराज जी के आगे, सोच रहे थे प्रेमी मन में कि हमारे बिना महाराज जी का काम नहीं चलता, क्योंकि सारा काम तो प्रेमी करते थे। महाराज जी खुद तो खुद तो कुछ करते नहीं थे, केवल मार्गदर्शन करते थे। तो गुरु से क्या छुपाता है, वो तो अंतर्यामी है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया प्रेमियों का अहंकार तोड़ने के लिए, प्रेमिया ये अंदर से किसी के नहीं है। तो प्रेमी समझ रहे हैं महाजी हमारे मोह में ग्रस्त हैं, लेकिन गुरु तो तीन काल अपनी देह से अलग है, तुम्हारी देह का क्या करेगा वो? तुम्हारी देह का क्या करेगा? तो इसीलिए ये कितना गंभीर मसला है, कितनी गहराई से सोचने वाला है, कितना गहरा मनन करने वाला है, जरा विचार करके तो देखो। और हम कितनी लापरवाही से सत्संग सुनते हैं, कितनी लापरवाही से हम जो है वो सेवा करते हैं, कितनी लापरवाही से शास्त्रों को पढ़ते हैं। जो मन में संकल्प है, मन में धारणा है, वो धारणाएं उस पर इम्पोज कर देते हैं, उसके अर्थ शास्त्र के असली अर्थ पे अपनी धारणा को इम्पोज कर देते हैं, फिर कहते हैं इसका ये अर्थ है। और महर्षि रमण की इतनी छोटी सी बात है और इसका यदि मनन करोगे तब इसका रियल अर्थ निकलता है। जब वो कह रहे हैं जिन कर्मों को करने के लिए ये देह पैदा हुई है वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब महर्षि रमण साफ दो चीज अलग कर रहे हैं, तुम अलग हो, देह अलग है। तुम अलग हो, देह अलग है, साफ साफ तो कह रहे हैं महर्षि रमण। और महाजी की वाणी भी बड़ा स्पष्ट कह रही है, बालापन को जोवन खाए, गई जरा जोवन को खाए, काल जरा को खा गया, जीव अंत पछताए। ये जो बालपन है, जवानी है, बुढ़ापा है और मौत है, ये तो देह की है ना, और पछता कौन रहा है? देह तो नहीं पछता रही है, जीव पछता रहा है। तो घटनाक्रम तो देह के साथ घट रहा है और पछता जीव रहा है। क्यों पछता रहा है? क्योंकि सारी जिंदगी वो देह को अपना स्वरूप समझता रहा, अब मौत के वक्त पता लगा था देह तो मैं हूं ही नहीं। तो कर्मों का जितना भी पिटारा था, स्वभाव का जितना भी पिटारा था, जितने भी कर्म फल भोगने को बचे थे, वो सारा मन के अंदर सुरक्षित है। इस जीव के साथ मन जो है वो, इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, मन को, अपने सूक्ष्म शरीर को जीव लेकर इस देह का त्याग कर देता है। और इस सूक्ष्म शरीर से ही संकल्प उदय होते हैं और उन संकल्पों के अनुसार इसको नई देह का इसका निर्माण हो जाता है इमीडिएटली। महाजी कहते हैं प्रेमी बीच में टाइम गैप है ही नहीं, वहां माइक्रो सेकेंड की भी गुंजाइश नहीं है। इस देह का त्याग और नई देह का निर्माण ये इमीडिएटली होता है, एक साथ होता है। और इसका महाजी ने एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार जोंक की गति होती है, कभी किसी ने चलते हुए जोंक को देखा हो, या एक ये कीड़ा होता है जो कमला कीट बोलते हैं, जिसमें रोए होते हैं ना, उसकी चाल देखो, चलेगा, जब अगला मुंह जमा लेगा, पूंछ उठाएगा, उठ के मुंह के पास पूंछ रख लेगा, फिर मुंह उठाएगा, ऐसे चलता है। तो महाजी कहते हैं प्रेमी जिस प्रकार जोंक अपना मुंह पहले जमा लेती है, फिर पीछे से पूंछ उठाती है, अपनी अपना शरीर उठाती है, उसी प्रकार जीव अपनी देह निर्धारित कर लेता है, तब पुरानी देह का त्याग करता है। यह है पुनर्जन्म। और इसका अनुभव हम रोज स्वप्न में कर लेते हैं, इस सिद्धांत का अनुभव हम रोज स्वप्न में करते हैं, लेकिन कभी जिंदगी में इस स्वप्न के एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश ही नहीं। सैकड़ों को फूंक आते हैं, सैकड़ों के क्रियाकर्म करते हैं, और हर बार पंडित यही बताता है कि जो जीव जिसकी देह शांत हुई है वो बच गया है, वो दुखी है जीव, उसकी शांति के लिए कुछ यज्ञ करो, कुछ दान पुण्य करो, जो वो शौक थे उसके वो पूरे कर दो पंडित को खिला के, वो भी आपका मूर्ख बनाता है। लेकिन जो ज्ञान सिखा रहा है वो आप नहीं सीखते उसे, पैसा भी खर्च कर रहे हो, टाइम भी खर्च कर रहे हो, उसकी सुन भी रहे हो और पूरी जिंदगी सुनते रहते हो, फिर भी ये बुद्धि से निर्णय नहीं करते कि जब जीव बच गया तो मैं तो फूंक कर तो देह को आया, सारी जिंदगी तो मैं उसको देह समझता रहा, अब मैं उसको जीव समझ रहा हूं। कभी सोचा नहीं ये चक्कर क्या है? कभी आपके मन में प्रश्न खड़ा होता यदि सोचते जिंदगी के बारे में गहराई से, तो इस प्रश्न के उत्तर की खोज भी करते, फिर किसी भी शास्त्र को पकड़ते, इसका उत्तर तो वहीं लिखा हुआ है, किसी गुरु के नजदीक जाते या उस पर विश्वास आता, उसकी बात सुनते, तो वो तो यही कह रहा है। सारी दुनिया में ये फेमस है ये बात, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, सब यही काम कर रहे हैं, लेकिन थ्योरी सबकी अलग अलग है, कहने के स्टाइल सबके अलग अलग है। तो बताइए, जब तक मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं, कर्म सारे देह से हो रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार, और जिसकी रचना जिसका संचालन प्रभु अंतर्यामी कर रहे हैं, संस्कार तूने बनाए हैं, कर्म फल रूप बीज तेरे अंदर पैदा है, तेरे अंदर जमा हुआ है, उस बीज के अनुसार तेरे सब ये पौध कर्मों की उपज हो रही है उसे। तो इसीलिए जब तक तू अपने आप को देह समझ रहा है, सारे कर्म फल का भोगता तू ही है, इसलिए हर कर्म के फल का प्रभाव तेरे ऊपर पड़ेगा, तो सुखी भी होगा, दुखी भी होगा, बेचैन भी होगा। और जिन संस्कारों से तू मुक्त हो सकता था, इस गलत फहमी के कारण उन संस्कारों को और गहरा करके जाएगा इस जन्म में, क्योंकि पशु के अंदर यह भाव नहीं है मैं करता हूं, मनुष्य के अंदर यह भाव है कि मैं करता हूं, इसीलिए मनुष्य को पशु से भी नीच कहा जाता है। समता विलास पढ़कर देख लीजिए, पशु से भी नीच है मनुष्य जो इस अहंकार के साथ जीता है कि मैं देह हूं, और इस अहंकार के कारण जो कुछ भी करता है सारा का सारा कर्म इसका पाप रूप है, क्योंकि ये झूठ समझ रहा है, सारा का सारा कर्म इसका पाप रूप है। ये किसी के 100 पेशेंट का इलाज करके उनको स्वस्थ भी कर देता है, उसको ये पता नहीं है ये भी पाप है। अब इसको समझना थोड़ा गहरी बात है, ये पाप इसलिए है कि तू अपने आप को ठीक करने वाला समझ रहा है, कर्ता समझ रहा है, और कर्ता तभी समझेगा तब तू अपने आप को देह समझेगा। तो अज्ञानी बनकर तू कर्म कर रहा है, इसलिए तेरा सारा कर्म ये अज्ञान का कर्म है, इसलिए ये पाप है। तुलनात्मक दृष्टि से किसी को दुख देना और उसके मुकाबले में किसी को सुख देना, ये अच्छी बात है। दुख देने के मुकाबले में सुख देना अच्छा कर्म है, ये तुलनात्मक दृष्टि से है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी पाप है, क्योंकि ये भी तेरे कर्तापन को गहरा कर रहा है, पुण्य कर्म भी तेरे कर्तापन को बढ़ा रहा है, इसलिए मनुष्य का ये पतन है। तो यदि हमने शास्त्र के मर्म को नहीं समझा, सत्पुरुषों की बातों के रहस्य को नहीं समझा, जो कि सिंपल वर्ड्स में वो कह रहे हैं महर्षि रमण की, इससे सरल बात क्या हो सकती है कि जिन कर्मों को करने के लिए ये देह पैदा हुई है वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इसको कोई विवेकवान ही समझेगा इस बात को, जिसने कुछ मन की सफाई की होगी, जिसने ऋषियों की बात पर भरोसा किया होगा, जिसने शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश की होगी सही रूप में अपने कल्याण के लिए, वो इसको पकड़ लेगा। जैसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मेरी बुद्धि ने भी तो इस बात को पकड़ा है, तभी तो एक्सप्लेन कर रही है ये। तो महर्षि रमण देह की बात अलग कर रहे हैं और जीव की बात अलग कर रहे हैं। मैं कौन हूं? मैं चाहने वाला हूं और ना चाहने वाला हूं, और देह की साइकिल ऑटोमेटिक चल रही है प्रभु के अधीन। तो इसीलिए इस जीव का इस मनुष्य जन्म में एक ही कर्म है बस, यदि इसको कर्म कहा जाए तो एक ही कर्म है कि अपनी मन की वासना से, अपनी मन की इच्छा से, या यूं कहने कि अपने मन से मुक्ति प्राप्त करना। देह से तो मुक्ति प्राप्त करेगा ही नहीं, वो तो ईश्वर तो मुक्त कर ही देगा इसको, मार के इस जीव को इस देह से तो मुक्त कर देगा वो, लेकिन इस जीव ने अपने मन से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो इसीलिए ये बात कही जाती है, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, जीव से कहा जा रहा है ये बात। तू मन के संकल्प के अनुसार कर्म करता है, और तूने हर कर्म का कर्ता ईश्वर को जानना है। इसीलिए तूने रात और दिन प्रभु की याद करनी, कर्ता वो है, मुक्ति प्रदाता वो है। तेरा वो इटर्नल होम है, तेरा स्थाई निवास है, वो स्थाई घर है तेरा, वो तेरी वो अपनी मां है, अपना पिता है। तेरा कल्याण करने वाला केवल वही है। मन का संग करके, मन का मोह करके तो तुझको बेचैनी ही मिलेगी, क्योंकि हर सोच इसकी झूठी है मन की। तो प्रेम करने की वस्तु इस जीव के लिए केवल ईश्वर है, और कहीं जाना नहीं इसने, दो फूल भी नहीं खरीदने उसके लिए, उसे वो अंतर्यामी है। उस ईश्वर को श्रद्धा के फूल चाहिए, प्रेम के फूल चाहिए, विश्वास के फूल चाहिए। वही अंतर्यामी गुरु बन के बाहर प्रकट हुआ है, तुमको रास्ता दिखा रहा है, तुम मेरे पास आओगे कैसे। तो प्रकट होकर वो कह रहा है कि सतगुरु तो अंतरम है, फिर भी हम नहीं मानते, कहां मानते। अंतर जो रमा हुआ है तो ईश्वर और गुरु एक है या अलग अलग हैं दोनों। यहां भी हमारी बुद्धि भ्रमित रहती है, कहते हैं गुरु कोई और है, ईश्वर कोई और है, यहां भी द्वैत खड़ा कर लेते हैं। कह तो रहा हूं कि कुछ सीखते ही नहीं, जैसे अज्ञानियों की धारणाएं हैं, उनकी बातें सुन सुन के हम भी अज्ञानी बन जाते हैं, वही नकल करते रहते हैं समाज की। व्रत करेंगे तो महाजी के साथ में नहीं करेंगे, महाजी ने कहा है भाई व्रत करो, तो व्रत का स्वरूप क्या है, सप्ताह में एक व्रत करना चाहिए। पूरे साल की बात कर रहे हैं महाराज, त्योहार की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सप्ताह में एक व्रत करना चाहिए, और उस दिन अधिक पवित्रता धारण करनी चाहिए, ना झूठ बोलो, ना किसी को कष्ट दो, गलत आहार भी ग्रहण मत करो, अधिक पवित्रता रखो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ईश्वर का अधिक सिमरन करो, और शाम के वक्त हल्का आहार ग्रहण कर लो, कोई भी सात्विक हल्का आहार ग्रहण कर लो, हो गया व्रत। कोई मानता है इस पर को? गुरु की बात को मानता है कोई? कोई मानने को तैयार नहीं है। फिर कहते हैं हम तो गुरु भक्त हैं, महाजी पे बड़ी श्रद्धा है हमारी, और हर बात का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी, करते रहो उल्लंघन, ऐसे ही बने रहोगे। तुम्हारी प्रगति कितनी स्लो होगी तुमको पता ही नहीं इस बात का। बातें छोटी छोटी हैं, ठीक है, ये एक व्रत की बात भी गुरु की पालन करोगे तो आपका गुरु से संबंध तो बनेगा। मैं गुरु की बात मानकर चल रहा हूं, संसार ने जो कुछ सिखाया था मैंने छोड़ दिया उसको, ये एक छोटा सा नियम जो आप पालन कर सकते हो, लेकिन कहां ले जाएगा आपको, ये होश है कुछ? तो जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं करते, फिर ये तो बड़ी गहरी बातें हैं। ये काम यहां कहां, ये कहां बुद्धि पकड़ रही है, इतनी मोटी मोटी बातें बुद्धि नहीं पकड़ रही है, तो ये बारीक बातें बुद्धि कहां पकड़ेगी आपकी? फिर यही कहते रहोगे सब समझते हैं, सब जानते हैं, परंतु कर नहीं पाते। तो गुरु भी कहेगा भाई तो संसार के धक्के ऐसे ही खाते रहो, जब नहीं कर पाते गुरु तुम्हारा क्या कर सकता है। तो ये बहाने बनाकर, बातें बनाकर हम बचना चाहते हैं अपनी करनी से, नहीं बच सकते। करनी तुमको डुबो देगी, और गुरु धारण करने के बाद भी तुम्हारा जन्म निरर्थक चला जाएगा, ये पक्की बात। जिस दिन भी आपका कल्याण होगा वो गुरु की बात को गहराई से सोचकर उस पर अमल करके ही होगा। एक दिन आपकी भी यही स्थिति हो जाएगी जैसी अर्जुन की हो गई थी, कि वो समझ गया, वो कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया, मुझको स्मृति प्राप्त हो गई, जो ज्ञान की स्मृति थी ना उसको प्राप्त हो गई, उसका ये विश्वास टूट गया कि मैं करता हूं। अब वो कहता है कि मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने उसको कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष ही शाम माशुच। सारे धर्मों का त्याग करके अर्थात सारे कर्तव्य कर्म जो तूने मन में धारण कर रखे हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, सब कुछ अर्थात कर्तापन त्याग करके, तू अपना कर्तापन त्याग करके मेरी शरणागत हो जा, मेरी शरण में आ जा। यदि तू मेरी शरणागत होता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? अहम त्वा सर्व पापे भी हो, मैं तुझको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुच, शोक मत कर, दुखी मत हो। तो वही कर्तापन खत्म करने की बात अंत में गीता यही कह रही है, जहां गीता खत्म हो रही है वहां ये बात कही है कृष्ण। रास्ता एक ही है, पूर्ण शरणागत तुझे ईश्वर के प्रति होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सत्पुरुष होने वाले होते हैं वो मौत की भी फिक्र नहीं करते, वो जानते हैं इस देह का जीवन ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तेरा भाना मीठा लागे, जान जा रही है, गरम रेत सिर पर डाली जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं तेरा भाना मीठा लागे। प्रभु तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, हम गाते रहते हैं इसको, प्रभु तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, नियम बना के गाते हैं। इसको गाना बहुत जरूरी है, सोचना जरूरी नहीं है, गाना बहुत जरूरी। तो सत्संग करते करते हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है, सोचना ही बंद कर देती है। मैं कह क्या रहा हूं, अच्छा होता ना गाता तो सोचता इसके बारे में बैठ के, तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा तेरा भला होता। तो हमारी यही स्थिति है, सत्संग सुनकर भी हमारी बुद्धि जड़ बुद्धि बन जाती है, उसकी चेतनता खत्म कर देते हैं बातों को रिपीट कर करके, उस पर गहरा विचार ना करके। इसलिए जब तक खुद बैठकर स्वाध्याय नहीं करोगे, उसका गहरा मनन नहीं करोगे, सद्गुरु की बातों को आप अमल में नहीं लाओगे, फिर सारी जिंदगी यही कंफ्यूज्ड रहोगे। कर्ता तो ईश्वर है, सकल जगत का कर्ता जानो ही भगवान, तो इसका मतलब हो गया मैं कितने भी पाप कर लूं, कितने जानवरों को मार के खा जाऊं, कर्ता तो ईश्वर है, वो ही भोगेगा, मुझे इस कत्ल का कोई दुख नहीं मिलेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये चालाक बुद्धि लेके जीते रहो, ऐसे ही दुख भोगते रहो, जन्म जन्मांतर तक मानसिक क्लेश सहन करते रहो, आपके कल्याण का कोई रास्ता नहीं। कर्ता ईश्वर उसी भक्त के लिए है, उसी जीव के लिए है जो ईश्वर को प्राप्त करने की दिल से कोशिश कर रहा है, और उनके मार्गदर्शन के अनुसार सारे ऐब छोड़ने की कोशिश कर रहा है, मर्यादा का जीवन व्यतीत करके कर्तव्य भाव से अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहा है, और उन अच्छे कर्मों का फल भी उसके हुक्म में देख रहा है, उसका अहंकार नहीं पाला है कि मैंने किया। तो वो अंतर्यामी प्रभु की दिन और रात याद करता है, या दिन रात उसको याद आती है। उठत बैठत प्रण एको धारी, एक पलक ना विसरे सतरूप मुरारी। जब कर्ता उसके लिए ईश्वर है तो उसकी याद कैसे भूल जाएगा, कैसे भूल जाएगा? ये तो मनमुखी जीवों की हालत है कि दिन भर काम करते हैं कर्ता बनकर, फिर सुबह शाम जब ईश्वर की याद करने बैठते हैं ईश्वर याद ही नहीं आ रहा है, संसार याद आ रहा है। अरे जिनके साथ कर्म किए हैं वही तो याद आएगा तुमको, कर्तापन तो नए संस्कार और पैदा कर रहा है ना, प्राणी तो भस्म नहीं करे, नए और पैदा कर लिए तो संसार याद आएगा या कर्ता याद आएगा? तो इसलिए महाजी कहते हैं प्रेमी जब तक बुद्धि में सही विवेक नहीं आता और इस विवेक के बल पर वैराग्य नहीं आता, तब तक सही अभ्यास आपसे नहीं बन सकता। इसलिए आम सत्संगी कुछ नियम पालन करता है, वो बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होता उसकी, इसीलिए उसकी जिंदगी में कोई बड़ी चेंज दिखाई नहीं पड़ती। कुछ पाप कर्म छोड़ देता है, कुछ गलत कर्म छोड़ देता है, ये चेंजेस तो दिखाई पड़ती हैं, कोई बड़ी चेंज दिखाई नहीं पड़ती। कर्तापन मूल माया है। कर्तापन निकल जाए तो जीव खुद ईश्वर है। तो इसीलिए एक गलती की सजा हम कितने जन्म भोगते हैं। तो इसलिए गुरु की बातों को, ऋषियों की बातों को, शास्त्रों की बातों को हल्के में ना लें, गहराई से उन पर चिंतन करने की कोशिश करें। गप तो हम बहुत लड़ा लेते हैं, संसार की बातें बहुत कर लेते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं संसार की बातें करने में, सैकड़ों थ्योरी रट रखी हमने, वर्षों हम कर सकते हैं बातें, लेकिन काम की बात ऐसी तपोभूमि में आकर भी हमारे मुंह से नहीं निकलती। हम इतने बिगड़े हुए लोग हैं कि काम की बात इस तपोभूमि में, ऐसी पवित्र भूमि में आकर भी हमारे मुंह से नहीं निकलती, वही सड़ी गली बातें संसार की निकलती हैं। जो आहार ग्रहण करते हैं वही उसी की डकार आती है। तो यही पाल रखा है हमने संसार की वासना, तो यही हमारे मुंह से निकलती है। तो ये सिद्ध करता है कि हम अंदर से कितने अविवेकी हैं, कितने ना विचार करने वाले हैं। तो बीमारी गहरी है, इलाज केवल गुरु के पास है। यदि उसकी बात मान चलेंगे तो एक दिन हमारा कर्तापन खत्म हो जाएगा। उस दिन पता लगेगा कि ना मैं करता था ना ईश्वर करता था, ये तो सब माया थी। वहां तो ईश्वर के अलावा कोई सत्ता है ही नहीं। जित देखूं उत और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, वो अद्वैत स्थिति है, वो है शांति, वो है प्रेम, वो है मोक्ष। ओम ब्रह्म सत्य।